ओम शांति। ज्वालामुखी स्वरूप बनने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। जितना अंतर्मुखता में रहते हैं उतना ही न्यारेपन का अनुभव होता है और वही हमें गहराई में ले जाता है। जैसे जैसे योग की गहराई अनुभव करने लगते अनेक अनुभवों को प्रैक्टिकल में प्राप्त करने लगते हैं। उसी में से ये एक अनुभव ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव, क्योंकि अब तक जो हम योग करते हैं साधारण स्वरूप का, बाप दादा से रूहान करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतना समय मन के अंदर व्यर्थ तो नहीं चलता है, लेकिन वो इतनी पावर भी नहीं रखता है कि जो हमारे विकर्मों को दग्ध कर सके या पिछला हिसाब किताब दग्ध कर सके। पुराने संस्कार, कमजोरियां, हिसाब किताब, इनको दग्ध करने के लिए ज्वाला स्वरूप योग प्रज्वलित करना बहुत आवश्यक है। इसी ज्वाला स्वरूप अग्नि में, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो रूप रंग गुण सब बदलने लगता है, ऐसे ही ये ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति ऐसी है जिसमें आत्मा के अंदर जो भी इतने जन्मों का मुलम्मा है या जो किचड़ा है पुराने संस्कार स्वभाव के रूप में, वो भी दग्ध होना शुरू होता है। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने आप को भट्ठी में डालो, क्योंकि भट्ठी में ही वो आग होती है जो जलाती है। तो इसी तरह हमें भी अपने आप को बीच बीच में स्वयं पर विशेष अटेंशन देते हुए जैसे याद की भट्ठी में डालना है। याद की भट्ठी में डालने से क्या होता है, वो अग्नि प्रज्वलित होती है। और वो अग्नि प्रज्वलित कैसे होती है, तो तीन शब्द हमारे सामने कई बार आते हैं बाबा की मुरलियों में, और वो तीन शब्द है लगन, मगन और अगन। लगन जब लगती है और उसमें जब मगन हो जाते हैं तब वो अग्नि प्रज्वलित होती है। लगन का मतलब क्या, लौकिक में जैसे किसी का लगन होता है ना, तो दो आत्माओं की सगाई होती है, सगाई के बाद विवाह होता है, उसको कहते लगन हो गया। अब ये लगन माना कि जैसे ही मालूम पड़ा कि इस आत्मा से हमारा कोई नाता है तो उसके तरफ न चाहते हुए भी बुद्धि जाना, ये लगन है। हमें भी ये पता चला है कि हमारा शिव बाबा के साथ अविनाशी नाता है साजन और सजनी का। उस साजन का पता चला हम आत्माएं सजनी है जब ये नाता स्पष्ट हुआ तो न चाहते हुए भी बुद्धि उस तरफ, मन और बुद्धि दोनों उस तरफ जाती है। तो ये संबंध से लगन लगती है। तो ये संबंध के ऊपर बाबा इसलिए जोर देते हैं क्योंकि तभी हमारा लगन उससे जुड़ता है और फिर ये लगन में मगन होना, मगन होना माना जब मन उसी की याद में रमा रहे, जब हमारे प्यार का केंद्र बिंदु वही बन जाए, उसका नाम है मगन। कि बस और कोई नहीं सूझे और कोई दिमाग में ख्याल न आए, उसी का बार बार ख्याल आना, तो वो है मग्न अवस्था। कि जब उसमें मन हमारा रमता रहे, निरंतर उसमें रमा रहे, वही हमारे प्यार का केंद्र बिंदु बन गया है। और जब ऐसी स्थिति है तब वो अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि प्रज्वलित होना माना शक्तिशाली याद, इतनी शक्तिशाली याद बन जाए जिसको दूसरे शब्द में कहे तो लाइट हाउस माइट हाउस का स्वरूप हो। और जैसे कि एक ही संकल्प में समा जाए, बीज स्वरूप स्थिति में अपने आप को ले जाए, तब वो अग्नि का काम आरंभ करता है। और उसके फायदे तो हमने देख ही लिए, किसी अग्नि में कितने जन्मों के पुराने हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार, सारी कमजोरियां सब दग्ध होने लगती है, जलने लगती है। कई बार जैसे मिसाल दे देते हैं कि सूर्य, अग्नि दूसरा सूर्य में होती है, कि सूर्य की किरणों को जब लेंस के द्वारा एकाग्र किया जाता है तो वहां से वो कागज जलने लगता है। इसी तरह हमारा बुद्धि योग जब बाबा के साथ इतना एकाग्र हो जाता है तो बाबा सूर्य जो है उससे जो लाइट माइट मिलती है उसी से हमारे वो विकर्म दग्ध होते हैं। लेकिन सूर्य का एक कर्तव्य नहीं है खाली जलाना, सूर्य के कितने कर्तव्य है, रोशनी भी देता है, ताकत भी देता है, विटामिन डी देता है। तो सौर्य ऊर्जा कितनी प्राप्तियां करा देता है, ऊर्जा जब वो बन जाती है तो कितनी अनेक प्राप्तियां करा देता है। तो इसी तरह बाबा ज्ञान सूर्य से जब हम लाइट और माइट को प्राप्त करते हैं तो स्वयं को भी मास्टर सूर्य बना देना, और उस मास्टर सूर्य बन जाने से न सिर्फ दूसरी आत्माओं को हम प्रेरणा की लाइट और माइट देते हैं। लाइट का भी दो अर्थ हमेशा बाबा बताते हैं, एक तो है हल्कापन, दूसरा है प्रकाश। तो प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। तो मास्टर सूर्य बनने से हल्कापन और प्रकाशमय स्थिति अनेक आत्माओं को प्रेरणा देकर के कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव कराता है। ऐसे बाबा ने भी इस संसार के कोयले की खान में से हमें कच्चे हीरे को उठा उठा करके लाए और उसको पॉलिश करके कितना चमकदार बना देता है, कितना प्रकाश स्वरूप बना देता है। सारी हमारी कमजोरी रूपी जो खाद है, अंदर में दाग है, वो सारे दाग को हटा करके कितना चमकदार बना देता है, प्रकाशमय बना देता है। कि जिसमें से अनेक किरणों की, शक्तियों की किरणों की लाइट्स चारों ओर फैलने लगती है और अनेकों को वो शक्ति प्रदान करती है। साथ ही साथ सूर्य में तो वो सौर ऊर्जा को आपने देखा कि उसमें कितनी प्राप्ति कराती है। तो एक है भट्टी जिसमें आग होती है, दूसरा सूर्य जिसमें आग होती है, और तीसरा यज्ञ जिसमें आग होती है। यज्ञ कुंड होता है ना, तो यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है। और जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें जौ तिल घी डाल करके स्वाहा करके कहते उससे जितनी नकारात्मक वाइब्रेशन होता है वायुमंडल के अंदर, वो नकारात्मक वाइब्रेशन को समाप्त करके वो जौ तिल और घी की खुशबू वातावरण के अंदर एक सकारात्मक एरोमा फैला देता है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए कि बाबा का ये महान यज्ञ जो है, इतना विशाल यज्ञ जो है, इस यज्ञ कुंड में भी आग जल रही है। कौन सी अग्नि जल रही है? आज की सुबह की मुरली बाबा की याद किया जाए तो कौन सी अग्नि जल रही है उसमें? पवित्रता की अग्नि जल रही है इस यज्ञ कुंड के अंदर। इसीलिए हरेक के बस की बात नहीं यज्ञ करना। बाबा भी कई बार कहते बड़े बड़े सेठ लोग ही यज्ञ करते हैं, तो उस बड़े सेठ के हम सभी कौन हो गए? जिसने अपने जीवन को एक यज्ञ बना दिया और हमारे जीवन रूपी यज्ञ के अंदर ये पवित्रता की अग्नि को हमने प्रज्वलित किया। पवित्रता की आग है ये। इसीलिए तो दुनिया वालों को भी आश्चर्य लगता है कि दुनिया के अंदर आग और कपूस इकट्ठे रह करके जले नहीं, ये हो नहीं सकता है, लेकिन यहां ये संभव है। जो असंभव साधु महात्माओं के लिए भी यहां संभव है, उसका कारण है कि पवित्रता की अग्नि नित्य प्रज्वलित है हम सबके जीवन में। और इस पवित्रता की अग्नि में जौ तिल और घी जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाती और सकारात्मकता का एरोमा क्रिएट हो जाता, तो हमारे जीवन में भी तन मन और धन कि अशुद्धि सारी जल करके नकारात्मकता को समाप्त करके मन के अंदर नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार, उसको समाप्त करते, उसको जलाते हैं पवित्रता की शक्ति से। आज की बाबा की मुरली याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा कि तुम पांडव गवर्नमेंट ये गुप्त कार्य कर रहे हो। और कौन सा गुप्त कार्य है? सभी के कैरेक्टर्स को श्रेष्ठ बनाना, शुद्ध करना। तो तन मन और धन इस जीवन रूपी यज्ञ के अंदर जो है पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उसका शुद्धिकरण होने लगता है। और जब ये शुद्धिकरण होता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता और व्यर्थ है वो समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता की एरोमा खुशबू फैलने लगती है। तभी तो कहते हैं कि पहले के समय के जो तपस्वी होते थे उनके शरीर से भी खुशबू फैलती थी। ये पवित्रता की ही खुशबू जो हमारे कैरेक्टर्स को इतने श्रेष्ठ बनाते, हमारे जीवन को इतने श्रेष्ठ बनाते, हमारे विचारों को इतना श्रेष्ठ और शुद्ध बनाते हैं, उसकी खुशबू चारों ओर फैलती जा रही है। तो इसीलिए ये जीवन यज्ञ कुंड है। तो प्रैक्टिकल में हमारी ये अग्नि प्रज्वलित हुई है, क्योंकि ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए अगर ये पवित्रता की ही अग्नि प्रज्वलित न हो तो ये जीवन रूपी यज्ञ ही शुद्ध नहीं तो वो ज्वाला स्वरूप स्थिति तो बहुत दूर की बात है। ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करने के लिए विशेष पुरुषार्थ क्या चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ बाबा हमसे कराते हैं? एक तो पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करने का पुरुषार्थ कराते हैं। दूसरी बाबा के मुरली में हम सभी ये बात सुनते हैं कि बच्चे अपनी दिनचर्या को देखो, अमृत वेले से रात्रि तक। हमारी दिनचर्या कैसी है? इस दिनचर्या में कोई खोट तो नहीं है? इस दिनचर्या के अंदर कोई गलती तो नहीं हो रही है बार बार पुरुषार्थ में? क्योंकि अगर ये दिनचर्या के अंदर कोई गलती हो रही हो तो वो गलती हमें बार बार हमारा अटेंशन खींचता रहेगा, ऊपर लगने नहीं देगा और वो ज्वाला को प्रज्वलित होने नहीं देगा। इसलिए दिनचर्या को एक्यूरेट बनाना बहुत आवश्यक है। तो ये महसूसता आती है कि दिनचर्या अगर सही है, जिस दिन हमारी दिनचर्या एक्यूरेट चलती है, सुबह से रात्रि तक एक्यूरेट चलती है, तो क्या होता है? खुशी, हल्कापन होता है। और उस खुशी में जब योग में बैठो तो मन सहज ऊपर उड़ जाता है, भारी नहीं होता है मन। तो सबसे पहला ज्वाला स्वरूप अनुभव करने के लिए अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट बनाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, बाबा के एक मुरली में पढ़ रही थी, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि जब बच्चे मैं का गीत गाना शुरू करते हैं ना, तो कल की मुरली में था, बाबा के पास ऊपर टीवी है ना, जिसमें बाबा हर एक का देखते रहते हैं। तो जिस समय बाबा को उस टीवी में से मैं की आवाज आने लगती है तो बाबा क्या करता है? वो टीवी को बंद कर देता है। बाबा उस राग का आलाप सुनना नहीं चाहता है। और बाबा ने कहा कि जब बच्चे वाह वाह के गीत गाते हैं तो बाबा वॉल्यूम बढ़ा देता है। तो बाबा की टीवी का वॉल्यूम बाबा तभी बढ़ाता है जब वाह वाह के गीत गाते हैं, यानी खुशी के गीत गाते हैं। कोई ऐसा कर्म वाह वाह करो, जब कोई ऐसा सिचुएशन के अंदर विजयी बनते हैं और वाह वाह का गीत गाते, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, तो बाबा भी उस टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है। और जब बच्चे मैं का आलाप शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, बाबा सुनना नहीं चाहता है। इसीलिए पिछले दो सीजन से, पिछले सीजन और इस सीजन में भी बाबा बार बार हमें पक्का करा रहे हैं, वाह वाह के गीत गाते रहो, वाह वाह के गीत गाते रहो। लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते? मुरली सुनते तब तो वाह वाह करने लगते हैं, मुरली पूरी हुई तो क्या होता है, और दो दिन के बाद तो वाह वाह ही भी भूल जाते हैं कि बाबा ने इतना अंदर में पक्का कराया। कितने मुरलियों में बाबा ने इस बात को पक्का कराया कि वाह वाह के गीत गाओ, लेकिन फिर भी हम बच्चे दो दिन गाते हैं वाह वाह के गीत, दो दिन के बाद क्या होता है? भूल जाते हैं और वही मैं का आलाप शुरू कर देते। बाबा हमारा ये मैंपन खत्म करना चाहते हैं। देखो, महावीर हनुमान को कहा जाता है, बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी, लेकिन उसको एक पूंछ दिखा दिया। तो ऐसे ही बाबा कहे, जब तक पूंछ जलेगी नहीं तब तक लंका जलने वाली नहीं है। ये विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए भी, जब तक हमने मैंपन को जलाया नहीं है, इस पूंछ को जलाया नहीं है, तब तक ये लंका भी जलने वाली नहीं है। विनाश ज्वाला प्रज्वलित नहीं हो सकती है। तो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले हम सभी, एक एक बाबा का बच्चा, जब इंडिविजुअल में ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब वो आग जो है ये संसार को भी, पुरानी कलयुगी दुनिया को, रावण की लंका को भी संपूर्ण रूप से जला करके भस्म कर देंगे। तो मैं को समाप्त करना, दिनचर्या को ठीक करना ज्वाला स्वरूप के लिए पुरुषार्थ, दूसरा मैंपन को जितना खत्म किया है उतना ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करना सहज है। तीसरी बात बाबा कहे, जब ये अंदर में धुन लग जाए, कौन सी धुन लग जाए, कि बस अब घर जाना है, अब घर जाना है। जैसे कोई विदेश में होता है तो विदेश में उसका रहन सहन कैसा भी हो, कपड़े आदि क्या भी पहनते हो, लेकिन जब भारत में आते और वो भी गांव में अगर जाना होता है तो क्या करते, जैसा देश वैसा वेश कर लेते, उस सभ्यता अनुसार कपड़े पहन लेते। तो इसी तरह हमें भी अगर जाना है अपने घर, यानी उस निराकारी स्थिति में, क्योंकि ज्वाला स्वरूप माना उसका आधार है निराकारी स्वरूप की स्थिति, तो उस देश में जाना है हमें, तो हमें भी अपना स्वरूप वैसे बनाना होगा। और जैसे जैसे वो स्वरूप हमारा जितना ज्यादा बनता जाएगा, अगर लिंक बार बार टूटती रही तो ज्वाला स्वरूप नहीं हो सकता। उसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूएशन चाहिए। जितना ज्यादा समय हम उस स्वरूप में स्थित रह सकते हैं उतनी हमारी योग की ज्वाला प्रज्वलित होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अब घर जाना है, ये धुन अंदर में लगी रहे, और उसके लिए अभ्यास हमारा यही निरंतर रहना चाहिए कि बस मैं निराकारी आत्मा, क्योंकि घर जाना है तो बाकी सब बातों से उपराम सहज हो जाएंगे। और उपराम जो होता है वो साक्षी हो जाता, उसके सामने कोई भी सीन आती है तो वो सीन उसको प्रभावित नहीं करती, उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन डिटैच, तो साक्षी होकर के देखना, और जो साक्षी बनता है वही साथी बन जाता है। तो बाप का साथ ना, क्योंकि ज्वाला स्वरूप के लिए मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई, ये लगन है, ये लगन में मगन होना है। तो और कोई संकल्प ना आए तो जितना साक्षी होंगे उतना ही बाप के साथी बनेंगे। तो घर जाना है, घर जाना है, जब जाना है तो उपराम, बुद्धि से उपराम, और जो व्यक्ति उपराम हो जाता है वो साक्षी, सारी सीन्स को देखने के बाद भी एक साक्षी भाव, और साक्षी भाव होगा तो साथी स्वरूप में, बाप समान स्वरूप में अपने आप को स्थित कर पाएंगे, और वही ज्वाला को प्रज्वलित करेंगी, वो अग्नि को प्रज्वलित करेंगी। और एक बात बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि जैसे कोई अर्थी को जलाते हैं ना, तो अर्थी को जलाते हैं जैसे ही आग थोड़ी ठंडी पड़ जाती है तो क्या करते लोग, लकड़ी से हिलाते रहते हैं तो फिर से वो आग भड़कती रहती। तो इसी तरह हमारी अग्नि भी ठंडी हो जाती है कभी कभी। तो ठंडी क्यों पड़ जाती है, उसका कारण बाबा ने बताया था एक मुरली में कि शुभ भावना ये प्रज्वलित हो सारे संसार की आत्माओं के लिए, यानी पॉजिटिव थॉट्स, शुभ भावना। लेकिन जब ये शुभ भावना हमारी थोड़ी ठंडी हो जाती है, और ये ठंडी होने का कारण है कि कोई न कोई भावना में कामना मिक्स होने लगती है, जब कोई न कोई कामना मिक्स होने लगती है तो वह ठंडी पड़ जाती है। तो इसीलिए उसको बीच बीच में हिलाना बहुत जरूरी है, तब ये अग्नि फिर से प्रज्वलित हो, यानी शुभ भावना की अग्नि अंदर में जलती रहे। उसमें कोई कामना मिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कामना ही अग्नि के ऊपर पानी डालने का काम करता है। तो ये मुख्य पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, मैंपन जितना समाप्त हो, कामना न हो अंदर में, और साथ ही साथ वाह वाह के गीत जितने गाते चले तो, और घर जाना है ये धुन जितनी पक्की रहे, तो ये हमारी अग्नि को नित्य प्रज्वलित रखते हैं। दूसरी बाबा की बात याद आती है कि ये आग को निरंतर रखने के लिए बीच बीच में अभ्यास बहुत जरूरी है, और ये अभ्यास में कंटिन्यूएशन, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को एक विधि बताई थी, और वो विधि थी कि बच्चे हर घंटे में पांच स्वरूप का अभ्यास करते चलो, हर घंटे में। तो इसीलिए यहां पर तो हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल बचता है कि साकारी आकारी निराकारी, साकारी आकारी निराकारी, ये आना और जाना। तो जितना ये ट्रैफिक कंट्रोल हमारा चलता है, यानी बुद्धि को और मन को ब्रेक लगने के लिए, जैसे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगने से मोड़ सकते हैं, अगर ब्रेक ही ना लगे तो मोड़ना कठिन हो जाए, ऐसे ही अपने संकल्पों को मोड़ने के लिए भी मन बुद्धि को ब्रेक लगा करके बीच बीच में ये ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास जितना हम करते जाते हैं उतना सहज हो जाता है। तो ये मुख्य बातें अटेंशन में रखने की है, तब ज्वाला स्वरूप अग्नि प्रज्वलित होगी और अपने आप को निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रखे कि हम कौन है, शिव शक्तियां हैं। तो शिव और शक्ति, उसकी शक्ति चाहे वो भाई हो या बहन हो, जब ये कंबाइंड स्वरूप में आ जाते कि मैं और मेरा बाबा शिव और आत्मा शक्ति, उस समय चोला नहीं लेकिन मैं आत्मा शक्ति हूं, तो शिव और शक्ति उसी का ही गायन है दुनिया के अंदर के ज्वाला देवी का मंदिर है। ज्वाला देवी का मंदिर आप लोगों में से कितनों ने देखा है मालूम नहीं मुझे, लेकिन अगर कभी मौका हुआ और आप गए उस तरफ, तो ज्वाला देवी में दो चीजें हैं। एक तो ज्वाला निरंतर जलती रहती है, और दूसरा वहां एक कुंड है, और उस कुंड के अंदर पानी खौलता है ऐसे जैसे उबल रहा है, लेकिन अगर उस कुंड में हाथ डालेंगे ना तो एकदम बर्फ जैसा पानी होता है, ऐसा लगता है जैसे खौल रहा है पानी, और हाथ डालो तो एकदम बर्फ जैसा शीतल स्वरूप। ये हम सब बच्चों की प्रैक्टिस का यादगार है कि जितना हम बाबा की याद की ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतना शीतल स्वरूप अंदर से जितने शांति की शक्ति होगी, जितना शीतल स्वरूप होगा उतनी ही ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो दोनों चीज, एक तरफ ज्वाला भी है यानी ऐसा लगता है पानी खौल रहा, और हाथ लगाओ तो एकदम बर्फ जैसा शीतल पानी होता है, यानी जितनी आत्मा अंदर से शीतल स्वरूप अंतर्मुखी स्वरूप में रहेंगी उतना अग्नि को प्रज्वलित करना, और उसी का यादगार ज्वाला देवी, क्योंकि ये शिव शक्ति ने क्या किया, तो कहते शिव शक्ति ने असुरों का संहार कर दिया। यानी उतना ही हम अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को समाप्त कर देते हैं, न सिर्फ अपने लेकिन हमारे संपर्क में जो भी आते हैं उन सब के भी आसुरी वृत्तियों को संहार करने वाले हम शिव शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने एक बार ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की थी कि अगर एक व्यक्ति कहीं पर एक ज्वाला जला रहा है तो कितनी देर जलेगी, जल जल करके थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। इसीलिए अब आवश्यकता है समय अनुसार के संगठित रूप में इस ज्वाला को प्रज्वलित करना है। संगठित रूप में, एक ही संकल्प में जब हम बैठते हैं तो एक जैसे किला हो जाता है और किले के अंदर सेफ्टी है। तो इसलिए बाबा कहे कि आप संगठित रूप में जब बैठते हैं और ज्वाला स्वरूप स्थिति को के अभ्यास में बैठते हैं, यानी ये ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं, तब ये ज्वाला भड़कने लगती है। इसलिए संगठन की शक्ति का बहुत बड़ा कायदा है, ये किला का काम करता है। जैसे राजा होता है ना, राजा को कभी कोठरी पसंद नहीं होती है, राजा का हमेशा किला होता है, और उस किले में वो खुद भी सुरक्षित होता है और उसके साथ सारी प्रजा भी सुरक्षित होती है। ठीक इसी तरह हमारा भी ब्राह्मणों का ये किला है, तो इस किले के अंदर जब हम ये आग को प्रज्वलित करेंगे तो उसमें हर एक आत्मा सेफ रहेगी। अगर इंडिविजुअली अगर करने बैठे तो इतना वो अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, या स्वयं तक सीमित रहती है और थोड़ी समय के बाद वो धीरे धीरे वो आग ठंडी भी हो सकती है। लेकिन संगठित रूप में करो और समय के अंतराल को लेकर के करो तो देखो किस तरह से ये ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसलिए बाबा कहते हैं किले में रह करके ये अग्नि को प्रज्वलित करना है, किले से अपने आप को दूर नहीं करो। उसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि देखो बच्चे, कोई भी सब्जी बनानी होती है ना, तो उसमें तेल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी वो सब्जी टेस्टी बनती है। तो इसी तरह ये ब्राह्मणों की जो किला है या एक संगठन है, उसमें हर एक की जो विशेषता है, ये हर एक की विशेषता बहुत आवश्यक है यज्ञ के अंदर। क्यों आवश्यक है? क्योंकि तभी यह यज्ञ को कंप्लीट स्वरूप दे सकता है। किसी में कौन सी विशेषता, किसी में कौन सी विशेषता है, कोई नमक की विशेषता का कार्य भी करता है, तो कोई पानी की विशेषता का भी कार्य करता है, तो कोई तेल की विशेषता का भी कार्य करता है, तभी वो पक करके तैयार होती है और बहुत सुंदर टेस्टी बनती है। ऐसे ही हर ब्राह्मण के अंदर भी बाबा ने कोई ना कोई विशेषता वरदान रूप में दी हुई है, और जब उस विशेषता को लेकर के चलते हैं संगठन में, तब वो अग्नि को प्रज्वलित करके हम बहुत सुंदर अपने सेंटर का वायुमंडल, अपने परिवार का वायुमंडल, जहां भी है, हम चाहे यज्ञ में है, चाहे सेंटर पर है, चाहे परिवार के अंदर है, तो उसका वायुमंडल हम सेफ रख सकेंगे, तब वो सेफ्टी का साधन बन जाएगा, सेफ रहेगा। यानी दूसरे शब्द में कहे तो निर्विघ्न, जो बाबा कहते हैं बच्चे निर्विघ्न बनो, तो निर्विघ्न तभी बन सकते हैं कि जब हम संगठित रूप में ही मिलकर के ये ज्वालामुखी योग का अभ्यास करेंगे। अगर संगठित रूप में नहीं करते तो निर्विघ्न बनना मुश्किल है, आसान नहीं है। तो हर एक की विशेषता को लेकर के चलना, यही निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न वायुमंडल, निर्विघ्न सेंटर, निर्विघ्न यज्ञ को बनाता है। इसलिए बाबा चाहता कि हर बच्चे की अंगुली इसमें जरूर लगे। कोई भी बच्चा ये न समझे कि मैं इस संगठन में नहीं हूँ, मैं इस संगठन से बाहर हूँ या बाहर रह करके करूँ, नहीं, निर्विघ्न नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अकेले व्यक्ति के ऊपर तो अटैक होंगे। तो इसीलिए बाबा कहे बाहर का नकारात्मक वातावरण भी ऐसा है जो अटैक कर सकता है। तो इसीलिए ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करने के लिए जितना संगठन में रह करके हम एक ही संकल्प के साथ बैठ करके उस विशेषता को लेकर के जब बाबा को याद करते हैं, तो वह यज्ञ को, सेंटर को, परिवार को निर्विघ्न बनाने का काम करता है। इसीलिए संगठन का महत्व विशेष बाबा ने बताया है। तो तो ये ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव का आधार, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति का आधार क्या है? तो शुरुआत होती है आत्म अभिमानी स्थिति से। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उस आत्म अभिमानी स्थिति से धीरे धीरे निराकारी स्थिति, निराकारी स्थिति से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम बीज रूप स्थिति या अशरीरी स्थिति, अशरीरी स्थिति से बीज रूप स्थिति, और बीज स्वरूप स्थिति ही जब उसी में हम एकाग्र हो जाते हैं तो वहां से ज्वाला प्रकट होना शुरू होती है। तो इसलिए आधार आत्म अभिमानी स्थिति से शुरू होता है, आत्म अभिमानी से निराकारी, फरिश्ता बीच में नहीं आता है, फरिश्ता स्वरूप और स्वरूप है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति जो है फरिश्ता के लिए भी आवश्यक है। तो आत्म अभिमानी स्थिति निराकारी स्थिति के लिए भी और शरीरीपन की स्थिति के लिए भी बहुत जरूरी है। और जितना अशरीरीपन का अभ्यास करते जाएंगे तो बीज स्वरूप स्थिति यानी मैं आत्मा बीज, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, पूरा ज्ञान समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है, शक्तियां समाई हुई है, गुण समाये हुए, सब कुछ समाया हुआ है, इतनी पावरफुल स्थिति वो हो जाती है। और उसी में स्थित रहे कि धीरे 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 वही ज्वाला को प्रकट करने का काम करती है। इसलिए बीज स्वरूप स्थिति ही ज्वालामुखी स्थिति का आधार है। और बीज स्वरूप स्थिति तभी बनेगी जितना ज्यादा आत्म अभिमानी स्थिति और अशरीरीपन का अभ्यास करते जाएंगे, उतना ही बीज स्वरूप स्थिति में टिकना आसान हो जाएगा।